हरे कृष्णा। सो आज एकादशी है तो सामने भी एकादशी कीर्तन तो उसको पाठ करेंगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कारमूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, माधवती थी भक्ति जननी जतने पालना करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बरी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, गौर आमर जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, गौर से सब स्थान हेरिब आमी प्रणय भकत संगे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाचे, मृदंग वाद्य सुनिते मन गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हय, प्रसाद सेवा करिते हय सकल प्रपंच जय, দিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায় চরণ সিন্ধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ না সীমা পায় আসুতব তত চরণ রেণু ভজন অনুকূল তুলসী দেখি জুড়ায় প্রাণ মাধব তোষণী জানি গৌর প্রিয় সাথ সেবনে জীবন সার্থক মানি ভকতি বিনোদ কৃষ্ণ ভজনে অনুকূল পায় যাহা বিনোদ প্রতি দিবসে পরম সুখে স্বীকার করে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री निताय गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री हरिवासर तिथि की, ताय गौर हरि प्रमानंदी। तो आज आपका प्रथा के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत से पाठ, और मुझे ये भी बताया गया कि गोविंद घोष ठाकुर के तिरुभाव तिथि, उनके बारे में भी कुछ बताने के लिए। तो फास्ट क्या करें, आपके सीरियल ऊपर में लिखा है गोविंद घोष जी का, यही वो सीनियर है प्रभुपाद से भी तो गोविंद घोष ठाकुर, ऐसे उनका तिथि तत्र त्रयोदशी में पड़ता है, पता नहीं डेट कौन सा कैसे आज एकादशी में आया। आप चैतन्य महाप्रभु के लीला में उनके नाम अनेक बार देखे होंगे। वो तीनों भाई थे, गोविंद वासुदेव और मुकुंद, गोविंद घोष, वासुदेव घोष और मुकुंद घोष, तीनों प्रसिद्ध गायक थे, चट्टग्राम बांग्लादेश के रहने वाले थे। वहां से आकर के नवदीप वास करने लगे। नवदीप क्या, महाप्रभु के पास आ गए, उनके पार्षद थे नित्य। ऐसे कहा गया गौर गणदेश दीपिका में कि तीनों भाई कृष्ण के ब्रज लीला में तीनों ही गोपी थे। गोविंद घोष थे कलावती सखी, रासलास सखी थे वासुदेव घोष, और उनके भाई थे गुणतुंग गोपी। ये तीनों ही गोपी थे, भगवान के नित्य परिकर थे। तो यहाँ तक कि वर्णन प्राप्त होता है कि जब श्रीमन महाप्रभु श्रीवास आंगन में, जब काजी ने पुलिस भेज करके उनके मृदंग तोड़वा दिया, खोल भंगार दंगा, उसी समय में महाप्रभु ने ऐलान किए सारे नवदीप से, सारे भक्त लोग को आने के लिए, मसाल लेकर के मृदंग कीर्तन करके जाने के लिए काजी को घेराव करना था, असहयोग आंदोलन। तो उसमें गोविंद घोष उनके दो भाई भाग लिए थे, तीनों भाई उसमें भाग लिए थे। आपको शिवास आंगन के अनेक कीर्तन लीला में भाग लिए थे। विशेष करके उनका उल्लेख आता है जब श्रीमन महाप्रभु संन्यास लेकर के पुरी में रहे, और प्रतिवर्ष श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा के सामने सात टोली बना करके कीर्तन का व्यवस्था करते थे। हर टोली में एक एक गायक और एक एक नर्तक की व्यवस्था होता था। तो चार नंबर के टोली में मुख्य गायक के रूप में गोविंद घोष रहते थे, जिसमें वक्रेश्वर पंडित नाचते थे और रहते थे। और जो गोविंद घोष गान शुरू करते हैं, तीनों भाई में प्रसिद्ध संकीर्तनिया थे उन्होंने, वो जब गाना शुरू करे तो महाप्रभु नाचे, वक्रेश्वर पंडित नाचे, नहीं तो महाप्रभु नाचे, इस प्रकार की कीर्तनिया थे। जब तक महाप्रभु नीलाचल में रहे तो प्रतिवर्ष उनके आनंदवर्धन अर्थात आनंदवर्धन के लिए उन्होंने जा करके रथ यात्रा के उत्सव पर कीर्तन करते थे, महाप्रभु सप्रसन्न नृत्य करते थे। और उनके कीर्तन तो पूरे नवदीप और पूरे नीलाचल, ओडिया गौड़िया दोनों में ही प्रसिद्ध था गोविंद घोष का कीर्तन। आप गौर आरती में एक पद आता ना, संध्या आरती में गाते ना, कौन से पद है वो, उनका नाम आता ना घोष का, उनके दोनों भाई का, नहीं गाने के लिए क्या आता है, संजय मुकुंद वासु घोष आदि का, वही उनका भाई वासु घोष है। तो शायद गोविंद घोष इवनिंग आरती नहीं करते थे, नून आरती करते थे इसलिए उनका नाम आया, उनके भाई इवनिंग आरती करते थे। तीनों भाई ना तीन प्रहर में गाते थे, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। तो महाप्रभु का नीलाचल से अप्रकट होने के बाद महाप्रभु ने जब गोपीनाथ में प्रवेश कर गए तो उन्होंने और तो नवदीप के भक्त गोष्ठी जो रथ यात्रा में जाते थे, नवदीप के भक्त लोग हजारों संख्या में जो रथ यात्रा में जाते, रथ यात्रा देखना का उनका इच्छा नहीं था, ना जगन्नाथ दर्शन में इच्छा था, वो किस लिए जाते थे? महाप्रभु के दर्शन, महाप्रभु रहने तो क्या जाना बंद, अब टूर खत्म, यात्रा और निकला ही नहीं। तब उन्होंने दुखी होकर के तीनों भाई नवदीप में अलग अलग जगह में रुके, अलग हो गए, इतने दुखी हो गए तीनों, कोई किसी को देख नहीं सकता था। तो गोविंद घोष मध्यान्ह कीर्तन वाले वो अग्रदीप में रहे, मायापुर से ज्यादा दूर नहीं अग्रदीप, गंगा जी के पास में, वहाँ गोविंद घोष के श्रीपाठ आज भी है। ऐसे कहा गया कि श्रीमन महाप्रभु स्वयं उनको आदेश दिए कि गोविंद आप शादी करो, वो नहीं चाहते थे करने के लिए, मुख्य कीर्तनिया थे, लेकिन महाप्रभु के आदेश से विवाह किए। विवाह करके अग्रदीप में अपने गृहस्थ आश्रम बैठाए, फिर भी आते थे महाप्रभु के पास बराबर कीर्तन के लिए, लेकिन अकाल में उनके पत्नी और उनके एक पुत्र था, दोनों का वियोग हो गया। उन्होंने महाप्रभु के कीर्तन लीला में थे और कुछ व्याधि के कारण माँ और पुत्र दोनों मर गए। तो गोविंद घोष बड़े दुखी होकर के महाप्रभु बोले, ये क्या कर दिया आपने, मुझे शादी क्यों करवाया, फिर ये क्यों करवाया, मैं तो ठीक था, अच्छा था, ये क्यों लगाया, अब मेरा क्या होगा, अब मेरे वंश शादी भी कराया, वंश लोप भी करा दिया, ये क्या भाई। तो अब मुझे पिंड देने के लिए, पानी देने के लिए, श्राद्ध करने के लिए कोई तरह है ही नहीं। भगवान बोले, कोई बात नहीं, जब कोई नहीं रहा तो मेरे पास आ, तो मैं ही तेरे पास रहूंगा, और क्या है। बोले आप जाओ, जब महाप्रभु थे यह लीला में, तो बोले कि जाओ अपना घर के पास, देखना एक पत्थर का चट्टान है, उसमें देखना मुझे मिलेगा, मैं मिलूंगा उसमें। महाप्रभु तो इधर लीला त्याग करके चले गए और गोविंद घोष जाके पत्थर के अंदर एक गोपीनाथ विग्रह प्राप्त किए। वो गोपीनाथ विग्रह आज भी विराजमान है अग्रदीप में। मैं 2 साल पहले वहां गया था, मेला लगता है 10-15 दिन के लिए, लाखों संख्या में भीड़ होता है, लाखों, इस समय मेला लग जाएगा 10 दिन तक, इतने भारी भीड़। पूरे बंगाल में सबसे प्रसिद्ध है गोविंद घोष का श्राद्ध सेरेमनी, क्योंकि भगवान स्वयं श्राद्ध देते हैं। तो गोपीनाथ विग्रह को पूजा करते थे, तो गोपीनाथ जी ने गोविंद घोष को बोले, जब उन्होंने शरीर छोड़ रहे थे और रोते रोते बोले, मेरा तो कोई नहीं, मुझे कौन अभी मेरा लास्ट राइट करते हैं ना, मेरा अंतिम क्रिया मेरा कौन करेगा, और मेरा पिंडदान आदि कौन करेगा, साधक क्रिया आदि कौन करेगा। तो गोपीनाथ आकर बोले, गोविंद तू मेरे लिए तो सब कुछ किया, तो मैं तेरा पुत्र ही हूं, मैं तेरे लिए करूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो, तो सच में ना, हाँ मैं करूंगा, चिंता मत करो, जब तक सूर्य चंद्र रहेगा तब तक मैं आपका साध क्रिया करते रहूंगा तेरे पुत्र होने के नाते। तो भगवान वचन दिए थे उनको, तभी से अभी तक बोलता ना, इतने बड़े उत्सव होता है कि पूरे बंगाल टूट पड़ता है, वहां भगवान श्राद्ध देते हैं। अब मैं एक बार गया था देखने के, भाई कैसे भगवान श्राद्ध करते हैं, तो उनके मंदिर से उनको विग्रह को उठा करके पालकी में बड़े कीर्तन के साथ ले लाया जाता है गोविंद घोष जी का अपना मकान में, उनका मंदिर अलग था गोपीनाथ जी का, उनको लेकर आते हैं और हफ्ता दिन पहले आ जाते हैं ठाकुर जी, क्योंकि साधक करना तो उनका तो वही कुछ है नहीं उनके पास, तो ना बैंक बैलेंस है ना कोई सामान है, श्राद्ध कैसे करे। ठाकुर जी हफ्ता दिन पहले आकर गोविंद घोष का सिपाट में बैठते हैं और भीड़ आता है, सबको यही ऐलान प्रार्थना होते, ठाकुर जी भिक्षा करते गोविंद घोष की श्राद्ध तिथि के लिए, कोई चावल दाल जो जिसको देना है दो, भिक्षा करते हैं। लाखों लोग कई एक मुट्ठी चावल भी 1-2 रुपया भी फेंकते हैं, कोई सब्जी आलू जो फेंकते हैं, ट्रक लोड आ जाता है, ट्रक लोड, और उसका खिचड़ी पकता है, इतने परिमाण में खिचड़ी पकता है कि उतने खिचड़ी का तलाब बनता है, वो पात्र में रह नहीं रख सकते, मिट्टी के बहुत बड़े गड्ढा खुदाई करके उसको क्लीन करके उसी में खिचड़ी डाल के उसी में बंटन होता है। लाखों लोग आते हैं, सब हफ्ता भर के खिचड़ी बंटन होता है। आप लोग मायापुर में जाकर के शांतिपुर खिचड़ी फेस्टिवल देखे होंगे, उसका 10 गुना ज्यादा, ऐसे समझ लो। हम तो जाकर के फंस के जा ही नहीं पाए, जाकर फिर आ भी नहीं पाए। सुबह गए तो शाम तक निकल, इतने भीड़। तो अभी भी स्वयं गोपीनाथ अपने वचन के अनुसार उनके अंतिम क्रिया भी किए गोविंद घोष के लिए, और अभी भी हर साल चैत्र मास के एकादशी से लेकर के त्रयोदशी तिथि उनका मुख्य तिथि है, लेकर के हफ्ता भर बहुत बड़े फेस्टिवल करते हैं, और स्वयं ठाकुर जी उनके लिए पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। अभी भी चल रहा है, अपने मंदिर से आकर के बैठ करके सादा कपड़ा पगड़ी बांध करके जैसे पुरोहित करता ना श्राद्ध देते हैं, नहीं से करके श्राद्ध। तो इसलिए गोविंद घोष बड़े प्रसिद्ध हैं, उनका नाम अभी भी अग्रदीप में है, गोविंद से पाठ के गोपीनाथ जी। तो हे गोविंद घोष जी महाप्रभु के नित्य पार्षद थे, तो उनके लिए गीत गाते थे, और अंत में भगवान ने अभी तक भी उनको पिता मान करके उनके श्राद्ध क्रिया आदि करते हैं, भीख मांग कर करते हैं, बड़े उत्सव करते हैं। और गोविंद घोष, श्री गोविंद घोष ठाकुर की, सुहास कम से कम उनका तिथि में उनकी याद करके उनकी कृपा की जांचना सभी कर सकते हैं। उनके तरह तो हम गान कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उनका जो निष्ठा था, उनका जो भक्ति था, जिसके परिणाम में साक्षात गोपीनाथ आकर के उनके बेटा बन करके उनके साथ अभी भी करते हैं भीख मांग करके अभी तक। अब हम जैसे लड़के कितना दिन करेंगे, मर जाएंगे, खो जाएंगे, खत्म। लेकिन जिनका लड़का, वो लड़का तो मर गया, जिनका लड़का गोपीनाथ बन गए, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो होता ही जाएगा, वो बढ़ता ही जा रहा। देखिए श्रद्धोत्सव ऐसे करते हैं। तो इसे गोविंद घोष ठाकुर के आज तिथि है, तो अभी समय कम है, प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ना है, आप लोग का ट्रेडिशन है, मुझे यहीं पे यहीं से पढ़ने के लिए बताया गया है, प्रकरण 46, फिलाडेल्फिया, जुलाई 11, 1975। प्रभुपाद के स्वागत समारोह में प्राय लोग सहज ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते थे। उनके किसी नगर में पहुंचने के पहले वहां के मंदिर में भक्तों की बाढ़ आ जाती थी, दूसरे केंद्र के भक्त भी वहां उमड़ पड़ते थे। देखिए, प्रभुपाद जी ना तो कोई विदेशी थे, एक वृद्ध बंगाली आदमी थे, अपने पुराने कल्चर के हिसाब से। थोड़ी ही दिन, ये 75 की बात लिखा गया है, प्रभुपाद जी ने स्कंद के बीजारोपण कब किए, 66 में, 75, कितना ईयर, कितना साल हुआ, 9 साल में क्या मंत्र फूंके, जहां जा रहे हैं, वो तो बीजारोपण अमेरिका में किए, एक जगह पर, कौन सा जगह पर किए थे, न्यूयॉर्क सिटी में। अब ये फिलाडेल्फिया की बात कह रहे हैं, वो यहां कहते हैं कि जिस नगर में जाते हैं प्रभुपाद जी, बाढ़ की तरह भक्त इकट्ठा हो जाते हैं, उमड़ पड़ते हैं। क्यों, इस वृद्ध आदमी को देखने के लिए एक वयोज्येष्ठ बंगाली वृद्ध व्यक्ति, कुछ नहीं उनके पास में उनको देने के लिए, कुछ नहीं था उनके पास में, यहां से तो गए थे 40 रुपया लेकर के, जो $1 के बराबर भी नहीं होगा, लेकिन उनको रिसीव करने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए इतनी संख्या में भीड़ आते थे। अब क्या बोलते हैं कि उनके किसी भी नगर में पहुंचने से पहले मंदिर के भक्तों की बाढ़ आ जाती थी, दूसरे दूसरे केंद्रों के भक्त भी यहाँ उमड़ पड़ते थे। ऐसा नहीं कि जिस केंद्र में वहीं के भक्त सब आ जाए, नहीं, सब सेवा छोड़ वो तो जाते थे, बाकी जहां से तहां इधर उधर खबर मिलता था सब यहां से भी आ जाते थे, सिवाय थोड़े से भक्तों के। जैसे प्रभुपाद जी के भोजन बनाने के लिए लगी स्त्रियां, उनके रहने के लिए कमरे में अंतिम टाइल लगाने वाले पुरुष, यात्रा के रथ को सजाने वाले कुछ भक्त, से सभी लोग हवाई अड्डे पहुंचे। यही दो तीन लोग जो उनके घर साफ करने वाले, उनके लिए कुकिंग करने वाले, उनको छोड़ करके बाकी सारे हवाई अड्डे में पहुंच जाते थे। तभी जमाने में एयरपोर्ट में इस प्रकार चेकिंग नहीं था, ये तो टेररिस्ट की वजह से फिर हाल शुरू हुआ। पहले आप पूरे विमान तक जा सकते थे, हाँ वही अलाव था। ये थोड़ी दिन से सब ज़्यादा सिक्योरिटी शुरू हुआ है। अब वो भक्त लोग जाते थे प्रभुपाद जी के समय में पूरे विमान के पास, वहीं जाकर कीर्तन करते, नाश्ते को प्रभुपाद जी उतरने से निकला। ऐसा नहीं कि वो बाहर में आउटसाइड रोड में खड़े होंगे, वो आएंगे मिलेंगे अकेले लगेज लेकर के आएंगे, ऐसा नहीं होता था। कृष्ण ने प्रभुपाद जी के लिए व्यवस्था किए थे कम से कम तभी जमाने में, बुढ़े आदमी कहाँ से अपना लगेज फोज उठा के जाएंगे, पूरे विमान के अंदर तक घुस जाते थे। हाँ वो अलग था। हवाई अड्डे पर श्रील प्रभुपाद को बहुत तड़क भड़क का अभ्यास था, लयजुक्त करताल बजते थे, मृदंग पर थाप पड़ती थी और सकड़ो प्रमुदित शिष्य सामूहिक कीर्तन करते थे। ये जो शब्द लिखा है प्रभुपाद जी को हवाई अड्डा में बहुत तड़क भड़क का अभ्यास था, उसका मतलब हमेशा प्रभुपाद जी प्लेन में जाते थे, हवाई अड्डे पर पहुंचने से बड़े शोर गोल, सकड़ो भक्त नाचते गाते, टॉप ऑफ देयर वॉइस। प्रभुपाद जी आदि हो गए थे, बोले वो आगे होंगे। अब पूरा विमान अड्डा को उथल पुथल करते होंगे वो लोग, अभ्यास हो गया, क्या कहें, मानेंगे नहीं। हम लोग को कभी कोई नगर कीर्तन के लिए बुलाया जाता है, हमको शर्म लगता है, सड़क में जाएंगे सब दुकान के सामने लोगों के सामने ऐसे ऐसे नाचेंगे जाकर के, बोलेंगे हम एक सज्जन व्यक्ति हूँ, ये क्या, शर्म लगता है। और बोला जाए कि एयरपोर्ट में जा करके अंदर घुस करके नाचो, कोई राजी नहीं होंगे जाने के लिए। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ठीक नहीं, बाकी सब लोगों को, लेकिन कौन मानता है। प्रभुपाद जी को रिसीव करेंगे, उनके दर्शन करने के लिए लोग पागल हो जाते थे, और वो हम जानते थे प्रभुपाद जी हरि नाम कीर्तन सुनने से प्रसन्न होंगे, बस टूट पड़ते थे। सब लाज शर्म अपने सब डिग्निटी सब छोड़ करके जुट जाते थे कीर्तन में। और बोलते हैं कि केवल जब ये उश्रृंखल या उत्पातकारी बन जाते थे तभी प्रभुपाद आपत्ति भी करते थे, स्टॉप, क्योंकि वो कीर्तन इतने बढ़ता था कि उन्माद ही हो जाते थे, वो उत्पात करने बैठते थे कि ऐसा उत्पात तो हमें देखे नहीं, यहाँ लिखा भी नहीं। लेकिन कभी 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 अब देखे होंगे आप लोग भी, कोई उत्पात हो जाते होंगे, विदेश लोग हो जाते हैं, और जो आया साथ में उठाए फेंके नाचे गए, वो जेंटल कीर्तन नो, ऐसा पागलपन नहीं। तो फिर रोकते थे उनको, प्रतिवाद करते थे, अन्यथा कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें अपना उत्साह भरा स्वागत देखकर उनको प्रसन्नता होती थी। एक कृष्ण के प्रतिनिधि थे, उनको किस प्रकार बड़े उमंग से, बड़े उत्साह से, आनंद से सैकड़ों लोग जा करके हरि नाम के साथ उनको स्वागत करते हैं बिना लाज शर्म के, तो उनको प्रसन्न होता था, उनसे प्रसन्नता होता था। और वे फूल मालाएं और प्रणाम उसी तरह स्वीकार करते थे जैसे कोई वाइसराय या सम्राट की ओर से नजरना स्वीकार करता है। कोई सम्राट अपने सिंहासन पर बैठता है और प्रजा लोग आकर के चरण में दंडवत करके भेंट स्वीकार करते हैं, ऐसे ही फूल माला के ऊपर माला आता था। कई प्रभुपाद जी के फोटो देखे होंगे ना, कितने मालाएं चढ़ गया होगा हाँ? और इस प्रकार से प्रणाम और फूल माला, जो आया ठकाठक दंडवत मारते थे और माला चढ़ाते थे। प्रभुपाद जी की कृपा से समस्त प्रशस्ति और समस्त उपासना सीधे कृष्ण के पास पहुंचती थी। जितने लोग जाकर प्रभुपाद जी के चरण में नमन करते थे, प्रणाम करते थे, और जो फूल माला अर्पण करते थे, वो तो समझते हैं कि हम प्रभुपाद जी को अर्पण करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी यथावत आज इट इज सीधा ठाकुर जी को दे देते थे। ये था प्रभुपाद जी की खासियत। प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं, एक सही गुरु जी का ही रोल होना चाहिए। क्या? वो एक डाकिया, डाकिया बोलते ना, पोस्टपियन, पोस्टपियन के भांति होना चाहिए। पोस्टमैन, आपका मनी ऑर्डर आया कि चिट्ठी आया, वो उसको खोलकर पढ़ेगा ना? थोड़ा पैसा निकाल देगा कि जोड़ देगा? कुछ नहीं करेगा। आज चिट्ठी लाया, आपके एड्रेस में पहुंचा, आप उसको 2-4 रुपया बख्शिस दे या गाली दे, कुछ दे ना दे, कोई मतलब नहीं, वो उनको देना है बस। उसी में कुछ हेर फेर, नो एडिशन नो डिडक्शन, कुछ नहीं करेगा, आज इट इज लाके आपको दे देगा। इसी के लिए वही काम है उनका, वो उनका पास नहीं रख सकता। उनका पास रखेगा तो वो पोस्टमैन नहीं कहला सकता, नौकरी चला जाएगा उसका। तो इसलिए गुरु जी का नौकरी करेगा जो गुरुशिप, उनका यही काम है शिष्यों से जो श्रद्धा के भेंट अंजलि सब आज इट इज सीधा ठाकुर जी के पास पहुंचा देना। मीडिएटर है, आपने पास अगर रखेंगे तो फिर गया गड़बड़ी। तो प्रभुपाद जी जितने भी भक्त उनको ला के श्रद्धा में अंजलि प्रणाम आदि जो सब देते थे, फूल आदि सब ठाकुर जी के पास पहुंचा देते थे। इस प्रकार फिलाडेल्फिया में जैसा कि लगभग प्रत्येक हवाई अड्डे के स्वागत में होता था, श्रील प्रभुपाद बहुत संतुष्ट थे। स्नेह भरे नेत्र से वे अपने आध्यात्मिक पुत्र और पुत्रियों को, परिचित चेहरे को निहार रहे थे। यही एक ही गुण था उनके अंदर वास, एक ही गुण था जो हजारे विदेशी नवजुवक नवजुवती को खींच लाता था। बाकी को क्या करते थे वो? सोचो तो सही, एक बूढ़े व्यक्ति अपने शरीर का भी देखभाल करेगा, हाँ, और उसके साथ डेली सैकड़ों पत्र का जवाब देता था, कई गेस्ट को मिलता था, अपने डेली ट्रांसलेशन भी करता होता था, अपने डेली साधना भी करता होता था। कितना थोड़ी किसी को समझाने जाते थे, लेकिन इतना नहीं टाइम दे पाते थे, लेकिन टाइम नहीं दे पाते थे, शॉर्टकट में क्या देते थे यही इधर लिखा है, ढंग से सुनिए। उन्होंने एक स्नेह भरी नेत्रों से, समझिए क्या लिखते हैं वो, उसको अपने भाषा में लिखे लेकिन उस भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद जी की जो ग्लांसिंग, जो दृष्टि होता था, उसको कोई शब्द से, कोई भाषा से व्यक्त ही नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्या करें, हम जैसे मूर्ख के लिए व्यक्त किए हैं। एक स्नेह भरे नेत्रों से वे अपने आध्यात्मिक पुत्र और पुत्रियों को, परिचित चेहरे को निहार रहे थे। बस जैसे बहुत दिन के परिचित है, आप अभी 15 साल से मंदिर में रहते हैं, आपके जो ब्रह्मचारी मित्र हैं, कोई गृहस्थ मित्र हैं, आपके रूममेट कुछ भी, कभी कभी मिल जाते हैं, हाँ प्रभु जी कैसे, ठीक है, इसे कर, इतने प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इतने स्नेह और ममता भरे नेत्र से आप देखते नहीं। कार्य से, बोली से बहुत पावरफुल है आचरण, आपके अंग भंगी कैसे करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे एक नजराना डालते थे उनके ऊपर, ऐसे एक दृष्टि डालते थे, जिस दृष्टि के अंदर ना जाने कितने कितने करोड़ों गुना स्नेह और ममता भरा होता था। इस दृष्टि के द्वारा उन्होंने उन नवजुवक नवजुवतियों को, चेहरे को देखते थे जिससे उनके बहुत दिन से परिचित थे। ऐसा नहीं 10-15 साल, 9 साल से तो गए उन्होंने, लेकिन लगता है कि कोई 900 साल पहले से परिचित है। कितने बार जन्म मृत्यु है, लेकिन वो हमारे है, वो हम उनके, वो हमारे है। इस भाव से ये दृष्टि ही ऐसा ही था, एक दृष्टि डालते थे तो बोलते थे गया, अरे वो हमारे दादा है, हमारे अंकल है, हमारे प्रभु जी है, ऐसे मानते थे। और प्रभुपाद जी मानते थे वो मेरे पुत्र और पुत्री हैं, आपने बेटा बेटी जैसा मानते थे, और उन भी उनको अपने पिता जैसा मानते थे। ऐसे ममता स्नेह भरी दृष्टि था, निहारते थे। भक्तगण उनके गले में मालाएं पहनाने के आगे बढ़ रहे थे और संवाददाता अपने कैमरे में ध्वनि प्रसारक यंत्र और नोट पैड के साथ उनके निकट पहुंच जाते थे। होता था अब हाँ थोड़े बहुत कीर्तन करने से यहाँ मीडिया वाला नहीं आते, लेकिन सड़क पर जाकर थोड़ा हल्ला गुल्ला करो भागाएंगे। वास्तविक हमारा अभी ये आधुनिक युग में जो कल्चर है, सभ्यता है, उसका बहुत बड़ी देन है। मंदिर में कितने सुंदर उत्सव करो, कितने बड़े भगवान को श्रृंगार करो, कितने सुंदर चर्चा करो भगवान की लीला का, कोई मीडिया वाले नहीं आएंगे। इतनी शुभ खबर को सारे दुनिया को देने के लिए देखो भगवान का जितने सुंदर उत्सव है, इतने सुंदर दर्शन श्रृंगार है, इतने बढ़िया उनकी लीला कथा, कोई नहीं आएंगे सुने, कोई मीडिया वाला नहीं आएंगे देखने, कोई फटल कोई नहीं आएंगे, बुलाने पर भी नहीं आएंगे। लेकिन ये थोड़ी गंदा काम करो, किसी की छेड़खानी कर दो, कुछ कर दो ऐसे, तब देखना कोई बिना बुलाए सकड़ मीडिया आगे पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे ना, अरे वो छोड़ के नहीं जाएंगे। गंदे काम के लिए तो पूरे टूट पड़ेंगे वो, हाँ नोट प्याड कैमरे ध्वनि प्रसारण यंत्र लगा करके नोट प्याड लेकर के सारे आ गए, क्योंकि हम सब वही मक्खी की तरह है ना, जहां कूड़े कचड़े गंदगी वहीं दौड़ेंगे, अच्छे गुण को ना बिल्कुल नहीं जाएंगे, वहां केवल दोष दृष्टि के संपन्न है। हमारे सारे जो मीडिया वालों को हिंदी में क्या बोलते हैं, मीडियास, चलो जो भी हम समझ रहे हैं, उन लोग जो सारे सर्वसाधारण के पास संवाद को पहुंचाते हैं, और सारे सर्वसाधारण भी सुबह सूर्य उदय के साथ साथ बेड से उठेंगे, सबसे प्रथम वही महा पाप करने पाप कराने वाली पाप को पाप जीवन को देने वाली काव्य को पढ़ेंगे, है ना, नहीं मॉर्निंग न्यूज क्या बोलते हैं उसको, बेड टी के साथ अकबर अभी नहीं, हाँ यही हमारे दिन दिन का शुरुआत होता है उद्घाटन। सोते सोते उठेंगे, मुंह भी नहीं धोएंगे, चाय पियेंगे और पेपर हाथ में लेंगे, पेपर में क्या पढ़ेंगे सारे, अब मैं क्या बताऊं सबको पता है जो भी लिखा, मुझे भाषा बोलने के लिए शर्म लगता है, यही सब न्यूज पढ़ेंगे, उसी में हमारा दिन का शुरुआत करेंगे, तो हम अच्छे व्यक्ति कैसे नहीं बनेंगे, है ना भाई। यहाँ आओ दिन के शुरुआत में ठाकुर जी के दर्शन करो, श्रृंगार देखो, उनके नाम करो, कीर्तन करो, प्रसाद पाओ, जाओ थोड़ी बहुत, और इसके लिए आप देखो तो ये हल्ला गुल्ला होता था एयरपोर्ट में, हजारों युवक और युवती इकट्ठा हो जाते थे, इसीलिए रिपोर्टर दौड़ पड़ते, क्या है भाई ये बूढ़ा के लिए पीछे क्यों भागे सब, ये हल्ला गुल्ला क्या करना, उनको पता नहीं कितन फितन क्या होता है, हो तो बोले कोई झगड़ा झटी हो रहा है, चलो क्या हड़ताल कर रहे हैं कि दंगा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हाँ अब सरकार भी पुलिस डिपार्टमेंट में, अब 50-100 आदमी रोड में चले जाओ तुरंत पुलिस गाड़ी आ जाएगा, कुछ प्रोसेस निकाल रहे हैं क्या दंगा क्या। लेकिन आजकल तो अभ्यास हो गया है, कीर्तन पार्टी जाने में बोले ये तो डिसिप्लिन जाएंगे, वो कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, नहीं तो पहले कीर्तन हमें विदेश में तो जानते ना कीर्तन, 5 आदमी कीर्तन निकला बोले कोई गड़बड़ी है, कोई हड़ताल करते हैं शायद ग्रुप, तब आगे पहुंच जाते थे, क्या बात है, उनको समझ में नहीं आता था हरे कृष्ण क्या है, कृष्ण नाम को कुछ नहीं जानते, तो रिपोर्टर आगे पहुंचते थे, और उसके लिए बूढ़ा के लिए सब कर रहे, नाच रहे, माला पहनाना, क्या बात है, तो आके पूछते थे, बोले ये ओल्ड मैन के क्या नाम पुकारेंगे, तो बोले स्वामी जी, तो रिपोर्टर बोलते स्वामी जी आर यू गॉड, क्योंकि गढ़ के बारे जानते थे, कृष्ण कृष्ण तो जानते नहीं थे, गढ़ का कई नाम होता, एक नाम कृष्ण होता था, ऐसे मानते थे वो लोग। तो इसमें लिखा गया कि एक महिला संवाददाता ने पूछा, कहा कि कृष्ण चेतना आंदोलन लिंग भेद अथवा जाति भेद वाला क्योंकि भक्तों और वैदिक शास्त्रों में स्त्रियों और काले लोगों के विरुद्ध हमें प्रवृत्ति मिलती है, क्या आप इस पर टिप्पणी करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा। ये उत्पटांग पूछने वाला हूं, उनका दिमाग तो कुछ होता ही नहीं। वो बहुत तेज गति से बोलती थी वो महिला, तो प्रभुपाद जी समझ नहीं पाए क्या पूछी उन्होंने। तो ब्रह्मानंद को पूछे तो ब्रह्मानंद स्वामी ने इस बात को प्रभुपाद जी को समझाया, दोहराया। उन्होंने कहे कि वह कह रही है कि आप स्त्रियों और काले लोगों को हीन स्थान देते हैं क्या? तो प्रभुपाद उत्तर दिए, हम आध्यात्मिक दृष्टि से सभी को समान स्थान देते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से एक मनुष्य सेवक है और एक मनुष्य स्वामी है, आप इससे कैसे बच सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वामी हो सकता है, कोई सेवक नहीं होगा? भौतिक दृष्टि से एक पिता है और एक पुत्र है, एक स्वामी और एक सेवक, एक पुरुष एक नारी, आप इसे कैसे रोक सकते हैं? किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये सभी समान है। यहां भी समाचार का वही प्रकरण था जो चिकागो में शुरू हुआ था, और यहां भी ये चुनौती सामने आई, क्योंकि जो अभी चल रहा है गड़बड़ी उसी के बारे में पूछेंगे आकर उनको, वह उनको पूछने का क्या मतलब है? एक बार की सत्य घटना है, प्रभुपाद जी अमेरिका में एक बहुत बड़े हॉल में बैठे थे, कई सारे शिष्य उनके आए थे, उनको लेक्चर देते थे, एक आदमी उत्पटंग खड़े हो गया, बहुत शोरगुल के चिल्लाया, बोला ऐसा बोलते हैं कि आप गुरु हो, गुरु हो, व्हाट गुरु है, आप शिक्षा देते हो, आप सब जानते हैं क्या? प्रभुपाद बोले यस आई नो आई एम मास्टर। तो बोला मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, बताएंगे ना? पूछो। सबके सामने वो उदंड व्यक्ति खड़ा पूछा, सोचा, बोला ओके टेल मी हाउ मेनी फैंस आर देयर इन दिस बिग हॉल। बोला ये इतने बड़े हॉल जो कई मंजिल के था, ये परे हॉल में कितने फैन लगा है, ये कोई प्रश्न होता है? कितने फैन फीट है इस भवन में? प्रभुपाद जी ने तुरंत आंसर दिया उसको, बोले यू रास्कल आई एम नॉट मेटेरियल मास्टर, आई एम स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम स्पिरिचुअल थिंग्स, आई एम नॉट फैन मास्टर, फैन फिटर, मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ, आध्यात्मिक विषय में पूछूंगा उत्तर दूंगा, फैन फिटिंग करने को क्यों पूछ रहा है? तो आध्यात्मिक गुरु जानता नहीं था कुछ, स्पिरिचुअल कुछ जानते हैं, तो बैठ गया, सब लोग हंसने लगे, उसको शर्म लगा, बैठ गया। तो देखो बोलते सब जानता, फैन के बारे में नहीं बताता। तो उन्होंने महिला संवाददाता ने, तभी जमानों में ऐसे कुछ रेस कुछ चल रहा था आंदोलन, तो इसको आगे प्रभुपाद जी आपके इसमें मंतव्य क्या है? ए रेस मतलब कोई उच्च जाति के है, कोई नीच जाति है, कोई बड़े कोई नीचे, कोई पुरुष कोई स्त्री, ये सब भेदभाव क्यों? सब समान होना चाहिए। प्रभुपाद जी बड़े चतुरता से उत्तर देते हैं, बोले हम भी यही मानते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से सभी समान है, सब भगवान के शक्ति जीव है, जीव शक्ति है, लेकिन भौतिक दृष्टि से तो समान हो नहीं सकते, एक पुरुष होगा एक स्त्री होगा, एक स्वामी होगा एक सेवक होगा, है ना, एक पिता होगा एक पुत्र होगा, सब समान कैसे हो सकते? सभी पिता हो जाएंगे कोई पुत्र ही ना हो तो कैसे चले? स्वामी मास्टर हो जाएंगे सभी कोई सर्वेंट ही ना हो तो कैसे चले? सभी पुरुष हो जाएंगे कोई स्त्री ना हो तो कैसे चले? ये होना ही चाहिए, इसे बचा नहीं जा सकता, विविधता का आवश्यकता है। लेकिन उनका दिमाग को तो घुस नहीं सकता था ये सब चीज। प्रभुपाद जी फिर उसको समझाएंगे। तो फिर महिला संवाददाता ने पूछा, तो जो भौतिक रूप से घटित हो रहा है वो क्या महत्वहीन है? प्रभुपाद बोले भौतिक दृष्टि से भेद है, किंतु जब आप आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचते हैं और प्रत्येक वस्तु के अंदर आत्मा को देखते हैं, यहां सब समान है। जैसे आप लाल कमीज पहने हैं और मैं इससे भिन्न कपड़े पहना हूं, इस तरह का अंतर रहना ही है। संसार में जाने कितने पुरुष हैं कितने स्त्रियां हैं, सबके पहनावे भिन्न भिन्न है, आप यह नहीं कह सकते कि पहनावे से सब समान है। पहनावे समझते ना, वस्त्र, सबका वस्त्र समान ऐसे थोड़ी कह सकते हैं, सबका अलग अलग डिजाइन का अलग अलग कलर के वस्त्र, ये तो समान नहीं हो सकता। किंतु इस पहनावे के अंदर सभी प्राणी समान है, हम यह अंतर्भौतिक दृष्टि से करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। भौतिक दृष्टि से ये शरीर जो है तो कवर है ना, ढक्कन है ना, और ढक्कन अलग अलग हो सकता है पैकेज, लेकिन माल तो उसके अंदर एक ही है। पैकेज कैसा भी हो, कोई राउंड करे, कोई गोल शेप अलग शेप में करे, कोई अलग शेप में करे, वही माल है उसके अंदर। जीव शक्ति है, ढक्कन अलग अलग है, कवर सब अलग अलग कलर के अलग अलग डिजाइन के है। तो इसलिए हम कवर को जब देखते हैं तो अलग अलग दिखता है, लेकिन कवर के अंदर जो वस्तु को देखते हैं वो तो एक ही है। समझ में आ रहा ना, कितने सरल भाषा में, कितने सिंपल रूप में प्रभुपाद जी ने सपताते हैं। बहुत बड़े ज्ञान है, आत्मा का और शरीर का जो भेद है बहुत कठिन है आत्मज्ञान प्राप्त करना। प्रभुपाद जी ने इतने सरलता से उन संवाददाताओं को भी बताते हैं ताकि बिल्कुल वो समझ में आ जाएगा। वो बोलते हैं जैसे कोई कवर है पैकेज, वो कुछ भी हो, कैसा कलर का कुछ हो, लेकिन वो वस्तु वही होगा, कुछ कोई वस्तु ऐसे पैक कर लो आप। तो इसी प्रकार जो हमारे शरीर है ये सब कवर है, ये सब वस्त्र है, इस वस्त्र के अंदर जो प्राणी है वो तो एक ही। इस प्रकार से उन्हें बताते हैं। तो एक अन्य संवाददाता ने कहा, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, वह क्या वस्तु है जो आप दे रहे हैं? बोले आप किस लिए आए, क्या दे रहे हैं, कौन सा वस्तु दे रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप इतने सारे लोग सांवेगिक रूप से आपको अनुकूल हो रहे हैं? बोले हमारा तो प्रेसिडेंट भी आता है प्रोग्राम करने के लिए, मिनिस्टर भी आता है, इतने भीड़ इकट्ठा नहीं होता। हम उनके लिए महीना से एडवर्टाइज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करते हैं, खान पान को व्यवस्था करते हैं, तो तभी लोग नहीं आते, कितने सारे करने पर भी। और आप एक बूढ़ा व्यक्ति, इस देश का भी नहीं है, कुछ नहीं, नेता नहीं, पता नहीं कुछ नहीं है, आप क्या चीज उनको दे रहे हैं? पागल की तरह भागे भागे आते हैं, कुछ मानते नहीं नियम निष्ठा, कुत्ते आकर जंप करते हैं पागल की तरह। क्या देते हैं उनको, क्या वस्तु दिए उनको, है ना नहीं आशीर्वाद? तो प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से शिक्षित हो रहे हैं, हम भौतिक स्तर के ऊपर हैं, इसलिए हमारे यहाँ यह भेद नहीं है कि एक भारतीय, एक अमेरिकी, एक काला, एक गोरा, ऐसा कोई भेद नहीं है। हर एक ईश्वर का सेवक है, यही ठीक है। बोले क्योंकि मैं इस प्रकार बोलता हूँ, देता हूँ, समझाता हूँ कि कोई आपसे सभी जीवात्मा है और जीवात्मा का ही कर्तव्य ही धर्म है। तो इसी प्रकार प्रेम से मैं उनको बताता हूँ असली बात, तो इसलिए कोई भेदभाव नहीं, सब जुड़ के आते हैं मेरे पास। तो आप लोग सब सेपरेटेशन करते हैं, तो इसलिए गड़बड़ होता रहता है। एक अन्य संवाददाता ने कहा कि गुरु अनेक है, और उसने पूछा कि प्रभुपाद क्यों सोचते हैं कि उनकी शिक्षा ही सत्य है? बोले बहुत सारे गुरु हैं, आप क्यों सोचते हैं आपकी शिक्षा ही सत्य है, आप ही तो उनमें से एक गुरु हैं। तो प्रभुपाद इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं क्योंकि हम सब सत्य बोलते हैं, हम डिंग नहीं हाँकते हैं कि मैं ईश्वर हूं, हमें यथास्थिति का ज्ञान है कि ईश्वर महान है और हम उनके सेवक है। प्रश्न संवाददाताओं की परंपरागत श्रद्धाहीन पूछताछ की शैली में पूछा जा सकता था, समझे ना कैसे क्वेश्चन पूछा जाता था, एक ट्रेडिशनल श्रद्धाहीन तरीका से पूछा था जैसे पूछते हैं, किंतु प्रभुपाद उसका उत्तर कृष्ण के साथ अपने संबंध को परिलिखित करते हुए बड़े शालीन ढंग से देते थे। उन्होंने पूछा, मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं ईश्वर हूं, और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। प्रभुपाद जी ने बोलते हैं जिससे पहले गुरु से आपके पास कितने आए हैं वो अपने को गढ़ कहते हैं, लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं, कभी नहीं कह सकता, संभव नहीं, मैं तो उनके सेवक हूं। सर झुकाकर प्रभुपाद जी ने बड़े भद्र भाव से बोले, नहीं, हम डिंग नहीं हांकते, हम यथार्थ सत्य कहते हैं, इसलिए इसका प्रभाव होता है। यदि मैं कोई छल कपट की बात करूं तो कुछ समय तक वह काम करेगी लेकिन वह टिकाऊ नहीं रहेगी। संवाददाता पूछा, आपका उत्सव काल है उसमें क्या क्या होगा? टॉपिक उसे दिमाग में गुस्सा नहीं, बोला ये क्या बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा, तो टॉपिक चेंज कर दिया। बोला काल आपका उत्सव है, अभी आए बड़े फेस्टिवल से बोलते हैं, क्या फेस्टिवल है, क्या होगा उसमें? प्रभुपाद बोले, उत्सव यह कृष्ण या भगवान का स्मरण है। उत्सव क्या है? कृष्ण का स्मरण ही उत्सव है। वे अपने भ्राता और भगिनी के साथ कुरुक्षेत्र गए थे, इस अवसर की स्मृति में हम इस यात्रा का आयोजन करते हैं। कौन सी यात्रा? हाँ, श्रील प्रभुपाद किराए की लिमोसिन कार में, लिमोसिन कार जानते हैं? हम तो देखे नहीं, आप लोग समझते होंगे, दिल्ली में होता है कैसा कार पता नहीं, मर्सिडीज कार अगर आप देखे हैं बोलते हैं, लिमोसिन क्या पता नहीं, कैंडलिक लिमोसिन किराए में ले थे, ऐसे लिखा है उसने। कार में कीर्तनानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी और फिलाडेल्फिया मंदिर के अध्यक्ष रविंद्र स्वरूप के साथ बैठ गए। प्रभुपाद ने कहा, देखो फिर वही प्रश्न पूछा गया तो उत्तर ठीक था? ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, हाँ प्रभुपाद बहुत अच्छा था। प्रभुपाद बोले, भौतिक दृष्टि से तो भेद है, आप एक ढंग से कपड़ा पहनते हैं, मैं दूसरे ढंग से कपड़ा पहनता हूं, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। कार के चालक ने पीछे की सीट की ओर देखा, यदि आपको पीछे अधिक वायु चाहिए तो यहां कंट्रोल लगा गया है। पीछे कार है, कंट्रोल होता है, पीछे से कंट्रोल है। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, श्रील प्रभुपाद हम वातानुकूल यंत्र चालू कर सकते हैं क्या? समझ रहे ना? तो प्रभुपाद ने बोला, ठीक है बाहर की हवा अच्छा है, तो उन्होंने एसी बंद करके खिड़की खोल दी। उन लोग को बाहर की हवा पसंद नहीं, वो बाहर की हवा बंद करके अंदर से एसी चलाना चाहते। प्रभुपाद बोलते, नहीं ये ठीक है, बाहर की हवा ठीक है। प्रभुपाद को याद आया कि ये पहले दो बार फिलाडेल्फिया आ चुके हैं, 1969 में उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी से कुछ भक्तों के साथ टेम्पल विश्वविद्यालय में भाषण देते आए थे, और उसके पहले 1965 में बटलर पेंसिल्वेनिया से भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नरमान ब्राउन से भेंट करने भी आए थे। रविंद्र स्वरूप ने बताया कि वह विश्वविद्यालय का एक छात्र रह चुका था, और श्रील प्रभुपाद के यहाँ भाषण देने के एक वर्ष बाद उसने स्वामी निखिलानंद की कक्षा में अपना नाम लिखवाया था। एक स्वामी तभी अमेरिका गए थे 60s में, जिनका नाम था निखिलानंद स्वामी। तो जो रविंद्र स्वरूप जी थे, स्टूडेंट थे, अभी जो प्रभुपाद जी के स्टूडेंट बन चुके हैं, जब 65 में प्रभुपाद जी ने वहाँ यूनिवर्सिटी में भाषण देने गए थे, भाषण दिए थे, तो भाषण को सुने थे। सुनने के बाद उनका इतने हुआ कि निखिलानंद के पास जाकर एडमिशन ले दी। प्रभुपाद को सुने, उनका मन में थोड़ा जागृति आया, जाके स्वामी निखिलानंद जो ईश्वर थे उनके पास जाकर एडमिशन ले लिए। और जाकर अभी रविंद्र खुद बता रहे हैं, बोले मैंने देखा कि वो, हम पूछे तो बोले हम वेदांत पाठ करते हैं, खुद वेदांत कुर बोलते हैं, तो याद करके बोलते थे रविंद्र स्वरूप। उन्होंने पूछा, मुझे बताया था कि स्वामी निखिलानंद से जाकर पूछा, बोले स्वामी जी तो आप वेदांत पढ़ रहे हैं किंतु वेदांत है क्या? जाकर पूछे, विदेश लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, फरवर्ड होते हैं, सीधा पूछ देते हैं जाकर। तो और यह कह नहीं पाया निखिलानंद स्वामी, बहुत बोल नहीं पाया वेदांत क्या होता है। दांत मेरा है, दांत अभी तक निकला नहीं, तो वेदांती कैसे होगा? वेदांती मतलब बिना दांत का ना। अभी तो सदांत है, वेदांत थोड़ी बात। तब तो उन्हें बोलते हैं कि मैं जाकर के उनके स्टूडेंट बन चुका था, एडमिशन ले चुका था उनके मिशन में, और एक दिन उनको भेंट हुआ तो बैठ के पढ़ रहे थे। जाकर पूछा क्या पढ़ रहे हैं? ना मैं वेदांत पढ़ रहा हूँ। बोले तो वेदांत क्या है, हट जी वेदांत। तो कुछ मुझे कुछ बोल नहीं पाए, बोलते मुझे वो नहीं जानते कुछ बता नहीं। लेकिन तब मैं जब आपको फिर मिला, उनका मन रखा, आपको पूछा स्वामी वेदांत क्या होता है, आप इमीडिएट आंसर मुझे दिए थे, तभी से मैं फिर आपके पास आ गया उनको छोड़ करके। एक ही क्वेश्चन आंसर से आ गए। प्रभुपाद जी को पूछने बोले, आपको जब मैंने पूछा कि वेदांत का अर्थ क्या है तो आपने तुरंत बोले वेद मीन्स नॉलेज और अंत मीन्स एंड। वेद का अंत, वेद मतलब ज्ञान और अंत मतलब ज्ञान अंत, जो एंड है, ज्ञान का एंड है, ज्ञान जहां समाप्त हो जाता है वही कृष्ण है। तो वेदांत क्या है? कृष्ण है। हाँ, मुझे समझ में आया, इमीडिएट उत्तर दे दिया आपने। रो वेदांत पढ़ रहा था घंटों घंटों, लेकिन बोल नहीं पाया क्या बता। आपने बचाया कि वेदांत, वेद का अर्थ ज्ञान और अंत का अर्थ, उनका अंत मतलब कृष्ण। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था, यद्यपि वेदांत का अध्ययन कई घंटे कर चुके थे। तो प्रभुपाद ने बोले, यही तो कठिनाई है, जो मूर्ख हैं वही प्रमुख बन बैठे हैं, जिसे कोई ज्ञान नहीं है वो शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। इसी तरह जैसे कोई नहीं जानता कि वेदांत क्या है और वह वेदांत क्यों पढ़ रहा है, यह कितना सीधा सत्य है कि वेद का अर्थ ज्ञान और अंत का अर्थ है अंत। कोई अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, किंतु आधुनिक पद्धति यह है कि हम बिना किसी सीमा के बढ़ते जाते हैं, किंतु अंत तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। क्या यही बात नहीं है? क्या तुम्हारा मत है? बिल्कुल सही है, हम इसी प्रगति कर रहे हैं आधुनिक सभ्यता। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी के जो हर प्रकार के क्रिया मुद्रा, उनका बोलना, उनके चलना, बैठना उठना भक्तों के साथ, थोड़ी सी हम पढ़कर सुना, कैसे लग रहा है आप लोग? चटनी जैसा लग रहा ना, जैसे आप भात खाते हैं तो 2 किलो चटनी कितना लेते हैं? आधा चम्मच। और वो आधा चम्मच जीप में रखे उठाकर फेंक देगा भात को, अंदर सीधा थ्रो आउट। तो ऐसे अब कितने वेदांत पढ़े, दांत निकाल दे, कुछ भी करे इधर उधर, मन नहीं मानता। आप देखिए 10 मिनट उसको पढ़ो, लगना क्या चटनी के जैसा लग रहा ना? ये है भक्तों की चरित्र। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के लिए ही जीवन समर्पित किए हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ, तुम्हारा इच्छा है तारा इंद्रिय चालना, उन्हीं के लिए ही अपने इंद्रिय को उपयोग करते हैं। तो उन भक्तों का हरेक चीज, उनका बैठना उठना चलना बोलना देखना सब इतने प्रभावशाली, वो तो जो उनके सामने थे उनके ऊपर प्रभाव करता था, अभी 50 साल के बाद हम सुनते तभी प्रभावित हो जाते हैं। अब अभी नहीं, 500 साल बाद भी कोई सुनेगा तभी प्रभावित होगा। हाँ, ये है भक्त चरित्र। और उनमें से हमारे सामने प्रत्यक्ष एक भक्त, शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने इन संस्था को बनाया। एक शिष्य थे प्रभुपाद जी के, जब ही प्रभुपाद जी थे तभी जमाने की बात है, तब उन लोग का जो अधिकारी वृंद थे जीवी लोग, उनसे बना नहीं, वो भी एक सोचता था कि मैं भी कुछ हूँ, तो आकर के उनके साथ झगड़ा हो गया, पटा नहीं, तो आकर प्रभुपाद जी के पास सीधा पहुँच गया। पहुँच के बोला, प्रभुपाद बहुत हो गया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, लेकिन उन लोग से तो मेरा बनेगा नहीं, ऐसे ऐसे खूब कंप्लेन कर जा रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद मैं आपको समर्पित, आपको छोड़ के नहीं जा सकता, आपको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन इसकन छोड़ता हूँ। प्रभुपाद ने, रुको भाई, इसकन में कोई अंतर नहीं है, इसकन इज माई बॉडी, आई एम इसकन, इसकन इज मी, ना नहीं वो हो सकता है, लेकिन मैं तो इसकन छोड़ रहा हूँ, इसकन छोड़ रहा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। प्रभुपाद जी दृढ़ता देकर कहते थे, अगर तुझे किसी व्यक्ति के साथ नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता, तो इसकन मत छोड़ो, और तू किसी कारण से बस इसकन छोड़ दिया तो मुझे छोड़ दिया, फिर ऐसा मत करो कि तुम मेरे साथ रह सकता, ये भावना मत रखो, क्योंकि इसकन मैं नहीं बनाया, मेरा ही शरीर है। तो प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे कि अगर एक नदी है, बड़े नदी जिसे भवसागर कहते हैं, संसार के समुद्र है, उसको पार करना चाहते हैं तो कोई बड़े तैराक भी तैर के तो नहीं जा सकता, छोटे मोटे बोट क्या पार करेगा, नौका यहां काम नहीं करेगा, बड़े भारी मजबूत पोत है, पोत समझते ना, जहाज, बड़े भारी मजबूत जहाज है, उसमें कोई एक्सपर्ट कैप्टन हो अभिज्ञ तो आशा रहेगा पार कर देगा। बोले ये इस्कन जो है एक एक परफेक्ट बोट है, बहुत बड़े मजबूत बोट है इस संसार सागर के ऊपर, और मैं स्वयं उसका कैप्टन हूं, और इस बोट में आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको तबीयत खराब है या बैठ नहीं पाए, खड़ा रहो, सो जाओ, लटक कर झूलो, झूलते रहो, कुछ भी करो, उसके साथ हो गए तो आपको खींचे खींचे पार तो कर ही डालेगा, लेकिन उसको छोड़ दो, बाकी किसी को पकड़ो तो डूब के मरेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, सावेत भक्त वृंद की।